हजार लोग हैं जिसमें 350 के लगभग खवातीन और छोटे बच्चे भी हैं, और उनमें से अक्सर जो खानदान आए हुए हैं अगर म्यांमार में चल क्या है, एकदम आपको हवा बदल गई तो बीमार भी है, उनको जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आ गई और कोई पुरसाने हाल नहीं है। इब्तदा में इब्तदाई जोश तो इला माशाल्लाह सबका रहता, जब भी कोई नया काम होता तो जोश और खरोश से आप माह रमजान की पहली सुबह में चले जाइए फजर की नमाज में, मस्जिद में जगह नहीं मिलती, लेकिन दूसरे दिन जाके पीछे से 3 सफे खाली हो जाती। तो मुख्तसर इब्तदा में तो बड़ा जोश दिखा हैदराबाद के मुसलमान, लेकिन फिर अब उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। अब वो लोग उनमें से बस काम करने के काबिल है, बस काम करने के काबिल नहीं है, जो बस काम करने के काबिल है वो तो अपने पैसे खुद कमा के रोज का रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं। जो लोग काम करने के काबिल नहीं है, मरीज है, बीमार है, उनकी हालत वकीम यानी बुरी है। अल मुख्तसर के म्यांमार के लोगों की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, अगर हम में से कोई हिम्मत करे, हिम्मत करके उनकी कम से कम दवा की हद तक या मसलन बुनियादी सहूलतों की हद तक, क्योंकि रसूल खुदा की हदीस है कि कोई मुसलमान अगर इस हालत में सुख करे कि दूसरे मुसलमानों की उसको फिक्र ना हो तो वो मुसलमान मुसलमान नहीं। मुसलमानों के उम्र का एहतमाम जरूरी है, और मैं इस बात को मजबूत करना चाह रहा हूँ फलसफे इमामत की से कि मुसलमानों का इत्तेहाद जरूरी है, मुसलमानों को मिलजुल के रहना जरूरी है, कोई अकलमंद इसका मुनकिर नहीं हो सकता। एक बार दूसरी बात ये कि मुसलमान दुनिया की 1/4 आबादी है, 1/4 आबादी 1/4, तो मैन पावर के एतबार से, इंसानी ताकत और जखायर के एतबार से, मिनरल्स और माइंस वगैरह के एतबार से, इस्लामी सकाफत के एतबार से मुसलमान एक गनी कल्चर के हामिल है। मुसलमानों का कल्चर बहुत ही गनी है, और अगर मुसलमान मुत्तहिद रहे तो वो जो उनकी खोई हुई सियादत है यानी सरदारी, उसको हासिल कर सकते अगर मुसलमान मिलजुल के रहे सियासत के मैदान में। अगर वो हत्ता देखिए जब इस्लामी हुकूमत थी, ये अगर बंद हो जा सकता तो बंद कर दीजिए, थोड़ी सी अजियत हुई वो जगह। मुसलमानों की जब हुकूमत थी तो कोई यानी उसमें बॉर्डर्स नहीं थे, सरहदें नहीं थी, तो अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाए और ये छोटे छोटे मसाइल को हल कर ले तो तमाम सरहदें खत्म करके मुसलमानों की तमाम जरूरियात को पूरा किया जा सकता था। अब जो ये जो जोग्राफियाई हुदूद है, सरहदें बॉर्डर्स जो बने हुए इंडिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान ईरान का, ईरान तुर्किया का, तुर्किया इराक का, ये पूरे इस्तेमारी सरहद इस्तेमार की कोशिश है, ये यानी इस्तेमार का कारनामा, ये जो सरहदें बनी हुई है पहले जब इस्लामी हुकूमत थी तो कोई सरहद नहीं थी, कोई बॉर्डर नहीं था, रफ्तो आमद बगैर उसके होती थी और तमाम एक दूसरे के मुश्किलात को जानते थे और जरूरियात को समझते थे, हल करते थे, हल करने की कोशिश करते थे। तो अगर वहदत हो जाए मुसलमानों में तो मुसलमानों के अक्सर मुश्किलात हल हो सकते अगर इत्तेहाद हो जाए। सवाल अब यहां से शुरू होता है, असल गुफ्तगू का आगाज यहां से है, वो ये कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई आप लोग जो वहदत इस्लामी का नारा बुलंद करते हो, आप जो इत्तेहाद इस्लामी की बात करते हो, मुसलमानों के मिलजुल के रहने की बात करते हो, तो अब आपको हक नहीं पहुंचता कि आप इमामत की बहस छेड़ें, क्योंकि जब भी आप इमामत की बहस छेड़ेंगे वहदत इस्लामी कोलैप्स हो जाएगी, वहदत इस्लामी का फातिमा हो जाएगा, वहदत इस्लामी आगे नहीं बढ़ सकेगी अगर आप इमामत की बहस छेड़ते हैं। और उनका यह कहना है कि आज रसूल खुदा को गुजरे हुए 1400 साल हो गए, आज इस बात पर बहस करने की क्या जरूरत है कि रसूल खुदा का सही जानशीन कौन था। अगर खूब हम बहस करके किसी नतीजे पर भी पहुंच गए, हम ये साबित कर दिए कि हजरत अली अलैहिस्सलाम हकीकी जानशीन थे और जो दूसरे लोग थे वो लोग गासिब थे, तो क्या हम हकदार को उसका हक दिला सकते और गासिब को सजा दे सकते आज के दौर में? गुजर गया वक्त है, ये उनका कहना है। और इस नजरिए के जो हामी अफराद है, इस बहस को वो बोलते हैं कि बेफायदा बहस है, इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। अगर आप इमामत की बहस कर लें बिल्कुल कि कौन हकीकी इमाम है, कौन रसूल का सही जानशीन है, ये आज के दौर में बेफायदा और बेसमर बहस है, इसका कोई फायदा और कोई नतीजा निकलने वाला नहीं उनके नजदीक। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर इमामत का बुनियादी मसला उम्मत मुसलमा में हल हो जाए तो उम्मत के जितने दर्द हैं, जितने उम्मत की बीमारियां हैं, जितने उम्मत की परेशानियां हैं, सब बरतरफ हो जाए। इमामत का मसला आज देखिए 50 से ज्यादा 56 के करीब इस्लामी ममालिक है, लेकिन इनमें ईरान को छोड़कर या लुबनान के बाद हिस्से को छोड़कर सही लीडरशिप नहीं है, सही लीडरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। कौन है सही लीडर बताइए? अरबस्तान सऊदी, सऊदी अरब में सही लीडरशिप है, यमन में सही लीडरशिप है, दुबई में सही लीडरशिप है, कहां पे सही लीडरशिप है? बल्कि बरअक्स है, यानी वो अपने मफादात के लिए इस्तेमाली ताकतों से घिरे हुए हैं। अगर उम्मत मुसलमान के पास इमामत का वाज़े और क्लियर नजरिया होता तो आज उम्मत मुसलमान ये बराकंदगी, ये जबूहाली उम्मत मुसलमान की नहीं होती। उम्मत मुसलमान की ये परेशानियां इमामत के मसले को क्लियरली मंतिकी लॉजिकली तरीके पर हल न करने के नतीजे में है। अगर हल कर लेते होते तो ये परेशानी और ये जबूहाली ना होती। अब सबसे अहम मसला यह है कि इमामत का कॉन्सेप्ट तो मौजूद है, अहले सुन्नत में भी मौजूद है, अहले तश्ही में भी है, शिया अफराद में भी मौजूद है। अहले सुन्नत के नजदीक इमामत का कॉन्सेप्ट चंद चीजों पर महदूद है। पहली चीज यह है कि सरहदों की हिफाजत, सरहदों की हिफाजत हो। इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी पेशवा की यानी इमाम की है, जिनको भी अहले सुन्नत इमाम बना ले। दूसरी उनकी जिम्मेदारी क्या है? दिफाई ताकत को मजबूत बनाना, डिफेंस जो सिस्टम है उसको मजबूत करना, एक तो सरहदों की हिफाजत करना, दिफाई ताकत को मजबूत करना। तीसरी चीज अदल को रिवाज देना, यानी सब के साथ इंसाफ के साथ पेश आना, हकदार को उसका हक देना। और हुदूद इलाही कायम करना, हुदूद इलाही ममलिकत इस्लामिया में अगर कोई जिना करा तो जिना की हद जारी करना, कोई अगर कत्ल करा कत्ल का फिसास लेना, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक आपके पास हुकूमत और इख्तदार ना हो, कुदरत ना हो आपके पास, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। ये अहले सुन्नत का नजरिया है, अहले सुन्नत इमामत को इन चंद उमूर ही में मुनहसिर करते हैं, वो कहते हैं कि भाई सरहदों की हिफाजत कर लो, दिफाई निजाम को मजबूत कर लो, लोगों में अदल इंसाफ फैला दो, हकदार को उसका हक दिला दो, हुदूद इलाही को कायम कर दो, बस इमाम की जिम्मेदारी खत्म, अब इमाम की और कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि अहले तशरी का कहना है कि इन मजकूरा जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियों के साथ साथ ये जो मजकूरा जिम्मेदारियां हैं, मसलन सरहदों की हिफाजत, दिफाई निजाम को जो है मजबूत बनाना और अदल इलाही को कायम करना और जो है मजलूमों को उनका हक दिलाना, हुदूद इलाही कायम करना, ये तमाम बातें अहले तशरी भी इमामत के लिए कबूल करते हैं। लेकिन इससे बालातर अहले तशरी ये कहते हैं कि रसूल खुदा के बाद, रसूल खुदा के बाद रसूल का इल्मी जानशीन इमाम होता, एक बार। दूसरी बार खूब रसूल खुदा की रहलत के बाद नए पेश आने वाले मुश्किलात का जवाब देने वाला कौन है? जो नए मुश्किलात पेश आ रहे हैं जमाने के बदलने के साथ साथ, उन मुश्किलात का, उन सवालात का जवाब देने वाला कौन है? तीसरी बात, अहकामे इलाही को जो रसूल खुदा के जमाने में जिस तरह से रसूल खुदा को जिस तरह से बयान करने का मौका होना चाहिए था नहीं मिल सका, तो रसूल खुदा के बाद अब वो अहकाम इलाही की तशरीह व तौज़ीह की जिम्मेदारी इमाम के ऊपर, हलाल और हराम को बताना ये इमाम के ऊपर, किस कब, जबकि कोई नस मौजूद ना हो, कुरान की कोई आयत भी मौजूद नहीं है, हदीस भी मौजूद नहीं है, अब क्या करते? रसूल खुदा भी हाजिर नहीं है, रसूल खुदा रहलत फरमा चुके हैं, तो इमाम की जरूरत, यानी मस्कूरा तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ इमाम की ये भी जिम्मेदारियां हैं। कुरान की बहुत सी आयतें मुश्किल है, यानी बहुत सी आयतों की तफसीर मुमकिन नहीं है, मुश्किल है उन आयतों की तफसीर, उन आयतों की तफसीर कौन करेगा? इमाम करेगा। तो इमामत का कॉन्सेप्ट अहले सुन्नत में और अहले तशरी में फर्क है। अहले सुन्नत सिर्फ उन दुनियावी उमूर की हद तक महदूद कर देते, जबकि अहले तशरी उसको फैला देते, फैला के ये कहते नहीं, रसूल खुदा के बाद इल्मी मर्जा, मर्जा कहते हैं जिसकी तरफ रुजू किया जाता है, रुजू किया जाता है, मसलन मुझे कोई बात मालूम करनी है, मैं आपसे रुजू किया, आप मरीज हो गए, आप डॉक्टर से रुजू किए, मर्जा कौन है? रसूल खुदा के बाद इल्मी मर्जा कौन है? तो रसूल खुदा के बाद इल्मी मर्जा कौन है? ये दलाइल से अगर साबित हो जाए कि रसूल खुदा के बाद ये हस्तियां इल्मी मर्जा है, तो उनकी मर्जियत को मानना पड़ेगा, दलाइल से, अकली दलाइल और नकली, नकली यानी रिवायत, रिवायतों से जो दलाइल हमारे सामने आएंगे। सलावत पढ़ दीजिए, यहां से जो है मनसब इमामत की अहमियत वाजे होती है कि इमामत का मौजू कितना अहम है, यानी इसको एक गैर अहम मौजू नहीं करार दिया जा सकता, इमामत का मौजू बहुत अहम है, कौमों की सरनविश का ताल्लुक इससे, यानी कौमों की खिस्मत का ताल्लुक। आज हम ये अर्ज कर रहे हैं कि उम्मत मुसलिमा की तमाम तर बदबख्ती की जिम्मेदार अगर कोई चीज है तो वो फासिद लीडरशिप, गंदी लीडरशिप, बुरी लीडरशिप। अगर उम्मत मुसलिमा के पास सालेह, नेक और जिम्मेदार लीडरशिप होती तो आज उम्मत मुसलिमा की हालत न होती। और ये सिलसिला इनकार गदीर से चला, अगर उम्मत मुसलिमा गदीर का इनकार न करती, सकीफा में जमा होकर अपनी राय पर अमल न करती, तो आज उम्मत मुसलिमा को शायद ये दिन देखना ना पड़ता। खिदमत यह है, अगर मुसलमान तमाम मौजू में, तमाम मौजूद में, तमाम मसाइल में इत्तेहाद रखते होते तो इमामत के मौजू के ऊपर इतनी बहस की जरूरत नहीं थी। लेकिन मुसलमानों में तमाम मौजूद पर इत्तेहाद नहीं, मुसलमान चंद मौजूद पर इत्तेहाद रखते हैं, बकिया मौजूद परागंदा है, बकिया मौजूद पर मुसलमानों की राय बटी हुई है। अगर बटी हुई ना होती मुसलमानों की राय, मुसलमान अगर अक्सर मसाइल पर एक होते तो तो इमामत के मौजू पर इतनी बहस करने की जरूरत पेश नहीं आती। सबसे अहम सवाल यह है कि रसूल खुदा की रहलत के बाद आज 1400 साल हो गए, 1400 साल में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनकी तरफ हम किस, उन मसाइल में हम किसकी तरफ रुजू करें। अहले सुन्नत कहते हैं कि आप इमाम अबू हनीफा की तरफ, इमाम शाफई की तरफ रुजू कीजिए, जबकि अहले तशय्यु कहते हैं कि नहीं, अहले इमाम अबू हनीफा या शाफई रसूल खुदा के कम से कम 2 सदियों के बाद ये लोग पैदा हुए, जबकि हजरत अली बिना फसल, हजरत अली किसी यानी फासले के बगैर रसूल खुदा से इस्तेफादा की। तो इल्मी मसाइल को हल करने में हम किसकी तरफ रुजू करें? ऐसी शख्सियत से जो 200 साल बाद पैदा होने वाली है रसूल खुदा की, या एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी उम्र का बीशतर बल्कि पूरा हिस्सा रसूल खुदा के साथ गुजारा? तो एक यहां पे सबसे अहम पॉइंट जो जिसकी तरफ तवज्जो करना जरूरी है वो है इमाम शिनासी। जिस तरह से हम खुदा शिनासी करते, रहनुमा शिनासी करते, रहनुमा शिनासी यानी नबी शिनासी समझ लीजिए, खुदा शिनासी के बाद का मरहला है रहनुमा शिनासी यानी नबी शिनासी या पैगंबर शिनासी समझ लीजिए, खुदा को पहचानना, खुदा के बाद नबी को पहचानना, नबी के बाद इमाम को पहचानना, इमाम शिनासी का मौजू। इमाम शिनासी का मौजू अगर उम्मत मुस्लिमा मंतिकी तौर पर अगर हल कर ले तो उम्मत मुस्लिमा में जो लीडरशिप का जो फुकदान है या जो बुरी लीडरशिप उम्मत मुस्लिमा पर अब मुसल्लत है वो मसला हल हो जा सकता है। और एक मरतबा लीडरशिप का मसला हल हो जाए तो कई मसाइल उम्मत मुस्लिमा के हल हो सकते हैं। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि गदीर को ये यहां ये मुकदमा था समझ लीजिए कि इमामत की बहस की जरूरत क्या है। तो हम ये अर्ज कर रहे हैं एक जुमले में कि उम्मत मुस्लिमा की तमाम तर सआदत, कामरानी, कामयाबी का राज इमामत के अकीदे में मुनहसिर है, इमामत के अकीदे में मुनहसिर। और गदीर का जो वाकया है, गदीर का वाकया इमामत, ऐलान इमामत का वाकया है, यानी रसूल खुदा हजरतुल विदा के मौके पर जब जा रहे थे तो ये फरमा चुके थे कि अब मैं जब वापस आऊंगा तो फिर दोबारा हज करने की नौबत ना आएगी, यानी ये मेरा आखिरी हज है, मेरी उम्र का आखिरी हज है। जब मेरी उम्र का आखिरी हज है, जब रसूल खुदा ने ऐलान फरमा दिए तो बिलाद इस्लामिया इस्लामी शहरों से जितने मुसलमान आ सकते थे आ गए। तो उस जमाने में, उस जमाने का सबसे बड़ा इज्तिमा 120,000 लोग हज में जमा हुए, 120,000 लोग जब हज में जमा हुए, अब ये हज का मजमा, हज करके खाने खुदा का हज करके जब वापस हो रहा था उस वक्त रसूल खुदा ने इनको गदीर के मकाम पर रोका, रोक कर ये ऐलान विलायत किया कि यानी उम्मत मुस्लिमा को लावारिस नहीं छोड़ा गया, उम्मत मुस्लिमा का हाथ एक जिम्मेदार हाथ में दिया गया अल्लाह के हुक्म से। मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं कि हुकूमत का हक सिर्फ अल्लाह को हासिल है, हुकूमत बंदों पे कौन कर सकता? एक इंसान दूसरे इंसान पर हुकूमत कर सकता? इंसानों पर इंसान हुकूमत नहीं कर सकते, इंसानों पर हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है, क्योंकि अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारी तमाम तर जरूरियात से वाकिफ है कि एक इंसान को क्या चीजें जरूरी है, और हमारी फितरत से वाकिफ है। तो अल्लाह हमारा हाकिम है, अल्लाह को हुकूमत का हक हासिल है, अल्लाह के बाद किसको हुकूमत का हक हासिल है? अल्लाह जिसे दे दे, अल्लाह जिसको हुकूमत का हक दे दे उसको हुकूमत का हक हासिल है। तो अल्लाह ने हुकूमत का हक अपने बाद अंबिया को दिया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की 10 साल जिंदगी में इस्लामी हुकूमत कायम की, गर्चे छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इस्लामी निजाम नाफिज कर दी रसूल खुदा, 10 साल मदीने की जिंदगी। क्यों? अच्छा, बगैर उसके अगर आप इस्लामी हुकूमत का जो निजाम है, आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूं कि इस्लाम एक जामे मजहब है, जामे मजहब यानी एक कामिल और कंप्लीट रिलीजियन है, तो जब जामे मजहब है इस्लाम, तो आप इस्लाम में हुकूमत का कोई तरीकेकार बतलाया गया या नहीं? इस्लाम में तो नाखून काटने के भी आदाब बतलाए गए कि किस उंगली से शुरू करके किस उंगली पर खत्म करना है, बैतुल खला के आदाब बतलाए गए। तो क्या इतना बड़ा मसला लोगों पर हुकूमत करने का इस्लाम में उसका खाना खाली है? इस्लाम में वो बात कही नहीं गई कि हुकूमत करना किसको है, कौन करे, किस तरह से करे, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या होना चाहिए, एक अहम बात है या नहीं? तो क्या रसूल खुदा गवर्नेंस का सिस्टम बतलाए बगैर चले गए, जो कि सबसे अहम काम था? नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम एक जामे मजहब है, इख्तिसाब, सिकाफत, हुकूमत, तमाम बातों के लिए इस्लाम के पास कहने के लिए कलाम है, इस्लाम के पास कहने के लिए बातें हैं, और उसके पास एक सिस्टम है। इस्लाम ने पूरी जिंदगी का, इस्लाम तमाम शुबहाए हयात पर मुहित है। शुबहाए हयात यानी एवरी वॉक ऑफ लाइफ जो आप कहते हैं, इस्लाम उन तमाम शुबहाए हयात पर मुहित है, यानी उसके पास आपकी जिंदगी में पेश आने वाले हर मसले का जवाब। ये और बात है कि हम ना जानते हो, लेकिन इस्लाम के पास है जवाब। इस्लाम ने हुकूमत का भी सिस्टम बतलाया। हुकूमत का सिस्टम क्या है? अल्लाह हमारा हाकिम है, और अल्लाह के बाद जिसे अल्लाह हाकिम हमारा बना दे वो हमारा हाकिम है। तो अल्लाह के बाद रसूल खुदा हमारे हाकिम है। फिर अब जो मरहला रसूल खुदा के बाद यानी खत्म नबूवत के बाद का जो मसला है, उसमें खुद अल्लाह के हुक्म से या अय्युह रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक यानी रसूल से ये नहीं कहा जा रहा कि आप जिसको चाहे उसको बना ले, ना, रसूल से ये कहा जा रहा है कि आपकी रब के तरफ से जो हुक्म नाजिल हुआ है, आपकी रब की तरफ से जो अमर आया है उसको पहुंचाइए। और बल्लिग, उस्ताद जवाद नकवी फरमाते हैं, बल्लिग जो वमा अलैना इल्लल बलाग जो कहा जाता, बलाग का मतलब पहुंचाना नहीं। हम लोग क्या उसका तर्जुमा करते हैं, बलाग यानी पहुंचा दो, हमारा काम पहुंचाना है। अक्सर मुबल्लिगीन जान छुड़ाने के लिए ये बात करते, जब देखते कि मामला बड़ा सख्त हो गया और अब जो है थोड़ी सी यानी कुर्बानी देने का मौका है, तो वमा अलैना इल्लल बलाग पहुंचा दिए ना भाई, हमारा काम तो पहुंचाना था। बलगा के माना है इस तरह से पहुंचा देना कि कोई शक को शुबे की कोई गुंजाइश बाकी न रहे, यानी सामने वाले के पास उज्र बाकी न रहना कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई, एक नुक्ता समझ में नहीं आया, यानी इस तरह से। इसीलिए कहते ना इमाम जुमा के लिए क्या शर्त है, जो शख्स नमाज जुमा पढ़ाता उसके लिए फसीह और बलीग होना शर्त है। फसीह और बलीग के माना यह है कि इस तरह से खुतबे जुमा से गुफ्तगू करे, इस तरह से खुतबे जुमा से खुतबा दे के सामने बैठने वाले सभी को खुतबे जुमा समझ में आ जाएगी, पेश नमाज ये इमाम जुमा क्या कहना चाह रहा है। लेकिन हमारी हालत तो यह है कि 20 साल से हम लोग अरबी में सुन रहे हैं खुतबे, 20-25 साल उम्र गुजर गई, ना बोलने वाले को समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहा, ना सुनने वालों को समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहा, क्योंकि अरबी में हो रहे। जबकि खुतबों के लिए ये है कि जिस जबान के लोग तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं उस जबान में खिताब करो, उस जबान में खुतबे दो। अल्लामा ज़ीशान दरजवादी मरहूम अभी अबू ज़हबी में थे, अबू ज़हबी में जहां वो नमाज जुमा पढ़ाते थे वहां पे आधा मजमा अरब होता था, आधा मजमा इंडियन पाकिस्तानी होते जो उर्दू जानने वाले थे। तो अल्लामा का तरीकेकार ये था, एक खुतबा अरबी में देते थे, एक खुतबा उर्दू में देते, ताकि अरब भी समझ ले जो बात वो कहना चाह रहा है और उर्दू जबान अफराद भी समझ ले। हमारे 26 साल से तो मेरा तजुर्बा है, मरकजी मस्जिद में हमारी अरबी में खुतबे दिए जाते, अब अल्लाह के फजल व करम से कुछ बातें उर्दू में भी बतलाई जा रही हैं, कुछ बातें बहरहाल वो मतलूबा है, वो मतलूबा शक्ल नहीं है। अगर नमाज जुमा का निज़ाम दुरुस्त हो जाए तो कौम की तकदीर बदलने में सबसे अहम रोल अदा कर सकती नमाज जुमा, नमाज जुमा अगर दुरुस्त हो जाए, नमाज जुमा का निज़ाम अगर दुरुस्त हो जाए तकदीर बदल दे सकती है, क्योंकि नमाज जुमा भी इमामत का एक मजहर है। इसीलिए इमाम के लिए क्या नमाज जुमा का जो इमाम है पेश नमाज है उसके लिए क्या कहा गया कि शहर का सबसे पढ़ा लिखा आदमी एक बार शहर का सबसे पुरनुफूज आदमी है पुरनुफूज यानी उसकी बात का असर हो और शहर का सबसे शुजा आलिम यानी डरने वाला ना हो किसी से यक्षौना गमर जो अल्लाह की बात को पहुंचाने वाले होते हैं वो सिर्फ अल्लाह से खशियत करते हैं यानी अल्लाह से डर अल्लाह के अलावा किसी से वमा यक्षौना इल्लल्लाह वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते ऐसा आदमी शुजा आदमी पेश नमाज जुमा यानी जुमे की इमामत की जिम्मेदारी ऐसा शख्स कबूल करे खैर वैसा शख्स इंशाल्लाह भेजा है हम लोगों को तो ये मसला है कि रसूल खुदा ने गदीर के दिन जो ऐलान विलायत किया और उसका फलसफा पूरा ये है आज मैं मस्जिद में खिताब करने का मौका मिला तो मैं वहां पे यही अर्ज कर रहा था कि हम ईद गदीर मनाते क्यों हैं ईद गदीर मनाने का फलसफा क्या है इंसान को हर काम करने से पहले ये सवाल करना चाहिए अपने आप से मैं ईद फितर क्यों मना रहा हूँ मैं ईद अजहा यानी ईद कुर्बान क्यों मना रहा हूँ मैं ईद गदीर क्यों मना रहा हूँ मैं नमाज क्यों पढ़ रहा हूँ मैं रोजा क्यों रख रहा हूँ मैं हज के लिए क्यों जा रहा हूँ मैं ज्यारतों के लिए क्यों जा रहा हूँ ये एक खतीब यहाँ पे आए थे बात याद आ गई वो ये कह रहे थे कि उनका पहला जुमला हैदराबाद में आते ये था वो ये कह रहे थे कि मेरा खिताब मानने वालों से सोचने वालों से नहीं मेरा खिताब मानने वालों से सोचने वालों से नहीं यानी जो भी सोचने वाला है वो उठ के चले जाएगा यानी इस हद तक कौम को यानी आप उसको जो है तहकीर करना किसी को कि यानी सिर्फ आप मानने वाले हैं तो बैठिए हमारे सामने अगर मानने वाले नहीं है तो चले जाइए खैर अल मुख्तसर ये कि मैं ये उनसे अर्ज कर रहा था आज कि ईद गदीर हम क्यों मनाते हैं ईद गदीर हम इसलिए मनाते हैं कि रसूल खुदा ने हमारे लिए अल्लाह ने हमारे लिए एक ऐसा हाकिम मुकर्रर किया है जो इमामुल मुत्तकीन एक मुत्तकी शख्स को हमारे ऊपर मुसल्लत को नहीं कहना चाहिए बल्कि हमारे लिए इंतखाब किया है हमारे लिए एक मुत्तकी शख्स को चुना गया है यानी हमारे लिए एक नेक लीडरशिप का इंतखाब किया गया है इसलिए आज हम ईद मनाते हैं वैला अगर हम बद लीडरशिप या बुरी लीडरशिप के हत्थे चढ़ गए होते तो आज हमारी नौबत कुछ और होती ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने नेक लीडर को हमको सौंपा यानी हमको नेक लीडर के हवाले किया है यानी मुत्तकी शख्स के हवाले किया है ईद गदीर का फलसफा ये है एक किताब लिखी गई थी विलायत फकीह के मौजू पर विलायत फकीह या हुकूमत सालेहान सालेहान यानी साले की जमान फारसी में साले कहते हैं नेक आदमी को अरबी लफ्ज है साले वो साले को फारसी में जब जमा बनाते उसकी तो सालेहान यानी साले लोगों की हुकूमत नेक लोगों की हुकूमत मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ आज पूरी दुनिया के हुक्मरानों का जायजा ले लीजिए जायजा लेने के बाद ये बतलाइए कि दुनिया का सबसे सूटेबल आदमी दुनिया का सबसे बेहतरीन दुनियावी पैरामीटर्स के एतबार से दीनी पैरामीटर्स को आप छोड़ दीजिए दुनियावी पैरामीटर्स के एतबार से आज दुनिया का सबसे अच्छा हुक्मरान कौन है जिसको अपनी आवाम का दर्द जो अपना नींद चैन आराम करके आवाम की खिदमत में लगा हुआ है आप खुद फैसला कर लीजिए कौन सा वो निजाम है कहाँ पे ऐसा शख्स है मौजूद किस हुकूमत का सरबरा ऐसा है जो अपनी नींद चैन हराम करके लोगों की खिदमत में लगा हुआ है और ये काम वही कर सकता जो अल्लाह से डरता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा अल्लाह से डरने वाले जो है वो उलमा ही होते तो अल मुख्तसर ये कि ईद गदीर का फलसफा ये है कि हम साले लोगों की क़यादत को कबूल करें मैं जो इससे पहले भी निशस्तों में अर्ज कर रहा था कि हैदराबाद में साले क़यादत गोशानशीन है शुरू से हैदराबाद का अलमिया है हैदराबाद का अलमिया ये है कि हमारी शिया सोसाइटी में शिया कम्युनिटी में साले क़यादत नेक लोग गोशानशीन یعنی ان کو کبھی بھی ان کی قیادت کو ہم قبول نہیں کریں گے, نیک لوگوں کی قیادت کو ہم قبول نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غدیر کے پیغام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں. اگر ہم غدیر کے پیغام کو صحیح طریقے سے سمجھ لیے ہوتے تو نیک لوگ کبھی بھی گوشہ نشین ہونے پر مجبور نہ ہوتے. نیک لوگوں کا گوشہ نشین ہو جانا یہ بات سمجھا رہا ہے ان کو کہ ہم غدیر کے فلسفے سے ناواقف ہیں, ہم غدیر کے عید جو منا رہے ہیں بس ایک رسم کے طور پر منا رہے ہیں. جیسے ہم سبھی دم ہمارے رسمی ہیں نا, ہمارا مذہب بھی رسمی ہے, ہم قربانی بھی رسمی طور پہ کرتے, روزے بھی رسم کے عنوان سے رکھتے, شادی بھی رسمی طور پہ کرتے, مجلس بھی رسمی طور پہ کرتے, پورا رسمی اور کلچرل دین ہے ہمارا بقول اللہ جبل صاحب. کلچرل دین ہے, کلچرل دین الہی نہیں ہے ہمارا, الہی دین نہیں ہے ہمارا, آبائی دین ہے, باپ دادا سے جو چلے تھے. کوئی بات پہ انگلی رکھتے, ہمارے باپ دادا کے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا, اب یہ نئی بات کیا ہو رہی؟ کسی بات پہ آپ انگلی رکھیے یہی بات ہوتی سامنے سے. کیا اتنے زمانے سے چلے تھے ہمارا, کیا وہ لوگ بے وقوف تھے؟ وہ لوگ کیا تھے ہم کو نہیں معلوم ہے, لیکن خدا کا یہ حکم ہے, قرآن اور حدیث کا یہ حکم ہے, علماء کے یہ فتاوا ہے, مراجع کے یہ توضیح المسائل ہے. وہ چل لیتے آ رہا تھا, وہ کیوں کر رہے؟ یہ تو بالکل مشرکوں کا جواب ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم بت پرستی کیوں کرتے ہو تو وہ پلٹا کے یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو اسی کام پر پائے, وہ لوگ یہی کرتے تھے ہم بھی وہی کر رہے ہیں, تم کو نیا دکھ رہا تو تم چلے جاؤ یہاں سے. خیر المختصر غدیر کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نیک لیڈرشپ کو قبول کرنے کے متحمل ہو. اور نیک لیڈرشپ کا سلسلہ آپ دیکھیں پہلے امام سے لے کے آپ, اگر ہم مسئلہ خلافت کو ہم اگر چھوڑ دیں, مسئلہ خلافت سے صرف نظر کریں, خلفاء میں کس نے نہج البلاغہ جیسی کتاب دی؟ خلفاء میں کوئی ایک ایسا بتلائیے جس نے نہج البلاغہ جیسے خطبے دیے ہوں اور وہ کتابی شکل میں ترتیب پا کر ہمارے سامنے موجود ہو. اہل سنت بھی اس بات کا اعتراف کرتے کہ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکا. تو علمی مرجعیت تو ثابت ہے نا حضرت کی, اگر خلافت کو نہ بھی مانا کوئی اہل سنت تو علمی مرجعیت تو ثابت ہے نا رسول خدا کے بعد, اہل بیت کی علمی اور رسول خدا باضابطہ طور پہ. یہ خود پہ میرا معروضہ ہے کہ آپ حضرات اگر یہاں پہ ہمارے دوست اگر اہتمام کر سکے, ایران میں یہ کرتے ہیں کہ غدیر آنے سے دو مہینے پہلے یا ایک مہینے پہلے خطبہ غدیر ہے, رسول خدا نے جو خطبہ دیا تھا خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے, مختلف کتابوں میں ہے, اس کو چھوٹے چھوٹے بکلیٹس میں یا ایک بڑی ورک بک سائز میں اس کو پرنٹ کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے اور اس کے حفظ کے مقابلے رکھتے اور اس کی تفسیر کے مقابلے رکھے جاتے مسابقے. تو بچے خطبہ غدیر کو حفظ کرتے, تفسیر دیکھتے, مسابقے میں شرکت کرتے. خطبہ غدیر ایک جامع خطبہ ہے, ایک بار اپنی عمر میں ضرور اس کو پڑھنا چاہیے. اتنا جامع خطبہ رسول خدا کا, شاید یعنی اگر آج کے اعتبار سے ہم حساب کریں تو اس زمانے میں یقیناً 2-2.5 گھنٹے رسول خدا کو خطبہ پڑھنے میں لگ گئے ہوں گے اور واقعاً پڑھنے کے قابل ہیں. یہ خطبہ غدیر ایک اور خطبہ فدق دو جو جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا مسجد نبوی میں خلافت کے وہاں پہ دربار خلافت میں, وہ خطبہ. یہ دونوں خطبے ضرور ایک بار زندگی میں پڑھنا چاہیے اور کافی غور و خوض کرنے کے نقطے اس میں موجود ہیں, خود خطبہ غدیر میں بھی, خود خطبہ غدیر میں. تو المختصر اگر ہم غدیر کا مغز اگر جاننا چاہیں تو غدیر کا مغز یہ ہے کہ نیک لوگوں کو آگے بڑھاؤ, نیک لوگوں کو ہمارے پہلے امام سے لے کے آخری امام تک, اب جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور جس کی حکومت کے منتظر ہے کہ وہ آ کے ایک عالمی اسلامی حکومت قائم کریں گے, ان کے تعلق ان کی بھی مورفی جو ان کا بھی جو تعلق کیا گیا ہے وہ نیکی کے عنوان سے کیا گیا ہے, رسول خدا کی اولاد میں سے وہ شخص ہے وہ حضرت. تو المختصر یہ کہ پہلے امام سے لے کے آخری امام تک صالح قیادت. اچھا اب 12ویں امام غیبت میں ہے, اب قیادت کس کے پاس منتقل ہو؟ قیادت پھر نیک لوگوں کے پاس. باضابطہ کوالٹیز بتا دیے گئے ہیں. اب ٹھیک ہے ہم غیبت میں جا رہے ہیں, ہماری غیبت اب شروع ہونے والی ہے, اب تم کو کس کے ہاتھ کس کو سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ غیبت میں جاتے ہوں گے. فاما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا فللامام ان يقلدوا. ہمارے فقہا میں سے وہ لوگ جو اپنی نفس کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی خواہشات نفسانی کے پیروں نہیں ہیں, اپنی نفس کی ہر بات نہ سنتے ہوں, وہ فقہا. اور جو مطیع امر مولا ہو, یعنی اللہ کے ہر حکم کے تابع ہوں اور اپنی ہوا و ہوس کے مخالف ہوں, تم ایسے لوگوں کی تقلید کرو. غیبت کے زمانے میں یہ فلسفہ ہے. یعنی اگر آپ غدیر سے شروع کریں, غدیر میں جو صالح قیادت ہے, وہ صالح قیادت غیبت کے زمانے میں ائمہ نے خود فقہا کے ذمے کی ہے. آج فقہا ہمارے, اور آپ بتلائیے طول تاریخ میں کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں, مثلا یہ جو چرچ ہے, آپ یہ یقیناً پڑھے ہوں گے کہ یعنی بڑے بڑے پادری بڑے بڑے اخلاقی جرائم کا شکار ہوئے. بڑے بڑے پادری بڑے بڑے یعنی بہت اونچے لیول کے, یعنی میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس جو مجتہد لیول ہوتا وہ لیول کے بھی پادری بڑے سنگین اخلاقی جرائم کے مرتکب ہوئے. لیکن الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا ریشیو بہت نہ ہونے کے برابر. ہمارے جو بزرگ کیڈر کے علماء ہیں, بزرگ لیول کے جو علماء ہیں, کبھی بھی ان سے سنگین جرائم یا سنگین اخلاقی جرائم کبھی سرزد نہیں ہوئے, جس کے نتیجے میں آج دیکھیں آپ اگر اجتماع کسی سے خوف کھا رہا ہے تو یا لبنان کے شیعوں سے خوف کھا رہا ہے یا ایران کے شیعوں سے خوف کھا رہا ہے. آج ہماری جو پراکندگی ہے, چاہے جہاں پر بھی ہو, چاہے حیدرآباد ہند میں ہو یا پھر پاکستان کے بعض علاقوں میں یا پورے پاکستان میں ہو یا افغانستان میں ہو, کہیں نہ کہیں اس کا تعلق اجتماع سے ضرور ہے. اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. ہم لوگ اصل میں غافل ہیں, ہم لوگ اصل میں بہت ہی مدہوش ہیں. ہم کو معلوم نہیں ہمارا دشمن کتنا زیرک ہے اور اس نے کس حد تک کس یعنی آگے کتنے سالوں تک کی ہماری پلاننگ کر رکھی ہے. ہم غافل ہیں اس بات سے. ہمارا دشمن آج حیدرآباد کی پراکندگی دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی پلاننگ کتنی مضبوط ہے. حیدرآباد میں جو پراکندگی ہے, ایک دم لیڈرشپ کا فقدان ہے, اور جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ گوشہ نشین ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کا آج تک بھی صحیح طریقے پر ہم تک پیغام نہیں پہنچا گیا ہے. غدیر ہماری شعرا کی شاعری میں اور قصیدے خانوں کے قصیدوں میں منحصر یعنی قید ہے, اس سے آگے بڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. اس سے آگے بڑھ کے غدیر کا مغز لب لباب جس کو بول دے, ہم چھلکے میں کچھ ہیں, اندر مغز تک رسائی ہماری نہیں ہوئی. اگر مغز تک ہماری رسائی ہو جائے, غدیر کے پیغام میں حقیقی کو اگر ہم سمجھ جائیں, تو ہم آج یہ غنڈوں کا غلبہ قوم میں ہو ہی نہیں سکتا. آج ہر شخص ایک معمولی غنڈے سے لرزا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر شجاعت نہیں ہے, چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں, ہم یا شہر کا بڑا عالم ہوں, وہ سب غنڈوں سے پریشان ہے اور پوری مرجعیت قوم کی غنڈوں کے پاس ہے اور ہر نوجوان کا آئیڈل غنڈا بنا ہوا ہے. کیونکہ نوجوان یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں غنڈا بن جاؤں گا تو میری عزت ہوگی قوم میں, اگر میں غنڈا بن جاؤں گا تو میری آؤ بھگت ہوگی, ہر جگہ میرے چرچے ہوں گے, عالم بن جاؤں گا تو مجھے گالیاں سننی پڑیں گی. کوئی عالم بننے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی خوب جانے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی اپنا وقت اپنی زندگی کا قیمتی وقت جوانی کو قم جا کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. ان کا آئیڈیل ہے غنڈا. اس وجہ سے ان کا آئیڈیل غنڈا ہے کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قدرت کی پوجا ہو رہی قوم میں. چڑھتے سورج کی پوجا کہتے ہیں نا, چڑھتے سورج کی پوجا یعنی قدرت کی, یعنی قدرت کی پوجا ہو رہی ہے, یعنی طاقت کی, پاور. جس کے پاس طاقت ہے سب لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور وہ طاقت کس وجہ سے حاصل ہو رہی؟ آپ کوئی باہر کی قوم کے لوگوں کو قتل کر کے وہ طاقت اور پاور حاصل کی؟ قوم کے کمزور ناتوان جو اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے, ایسے لوگوں کو قتل کر کے وہ طاقت حاصل کرتے. میں عرض یہ کروں آپ سے, یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو غدیر ہے, ہمارے جو ائمہ کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے, وہ بیشتر افسانوی ہے, اور افسانہ کبھی حقیقت کا روپ دھار نہیں سکتا. इसलिए बात जमीनी करने की जरूरत है। हम हमेशा हर बात हवाई करते हैं जिसका जमीनी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, जबकि पूरा दिन आपका जमीनी हकीकतों पर, ग्राउंड रियालिटीज पर पूरा दिन मुनहसिर है, कोई बात हवाई नहीं है। हमारे आप बोलो अरे भाई अली के जैसे बनो, अली के जैसा अमल करो, हम वैसे कैसे बन सकते, खूब वैसे नहीं बन सकते, माविया के जैसे बन जाएंगे, यजीद के जैसे बन जाएंगे। ठीक, जब आप अली के जैसे नहीं बन सकते तो किसके जैसे बन सकते आप? माविया के जैसे बन सकते आप, यजीद के जैसे बन सकते। एक बार यहाँ पे दर्श हो रहा था तो मैं औरतों से पूछ रहा था, अगर मैं मर्द होती हुए मैं यजीद जैसा बन जाऊंगा तो आप लोग औरतें होंगे किसके जैसे बन जाते बताइए? अगर आप जनाब फातिमा के जैसे ना बने तो किसके जैसे बने? हमारे पास सामने लखत काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे सामने रोल मॉडल हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके बाद अइमा अलैहिस्सलाम, कुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी कौल है कि लकुम फी उस्वा, मेरे अंदर तुम्हारे लिए उस्वा है, रोल मॉडल है मेरे अंदर। तो इन अइमा को छोड़ के हमारा जवान या तो फिल्मी एक्टरों को या फिर होंडों को अपना रोल मॉडल और आइडियल बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो गदीर से बिल्कुल ना वाकिफ, अगर वो गदीर से वाकिफ होता तो ये नौबत नहीं आती। और गदीर बतलाई भी नहीं गई, उसका भी क्या कसूर है? उसको जो गदीर बतलाई गई उसमें पटाखे छोड़ना है, उसमें गाड़ियों के साइलेंसर खोल के उचकाना है गाड़ियां, लोगों को अजियत देना है, ये उसका उसको जो बतलाया गया उसको यही बतलाया गया। मैं आज ये कर रहा था हमारे दोस्त से कि जिस तरह से जब ईद फित्र या ईद अजहा आती तो आइमा महजून हो जाते थे, मगमूम हो जाते थे, उनसे उनके गम का जब सबक पूछा जाता था तो वो बोलते थे कि ये जो इमामत ईद है ये हमारा, उस पर गासिब लोग कब्जा किए हुए। यकीनन आज का दिन गर्चे ईद उल्लाह अकबर के उनवान से याद किया जाता है कि सबसे बड़ी ईद, क्योंकि तमाम ईदों का खिवाम यानी कायम होना इस ईद पर टिका हुआ है। नमाज का जैसा कि बरादर मोहतरम फरमा रहे थे, बुनियल इस्लाम अल खम्स, इस्लाम की बुनियाद जो है पांच चीजों पे टिकी है, नमाज, रोजा, हज, जकात और विलायत। और विलायत इनमें सबसे अफजल है, विलायत इनमें सबसे अफजल यह है कि अगर विलायत पाबरजा हो जाए तो नमाज भी कायम होती, विलायत पाबरजा हो जाए तो जकात का निजाम भी बहाल हो जाता, विलायत पाबरजा हो जाए, विलायत कायम हो जाए तो हज बेमाना है, हज अदा होता, विलायत अगर पाबरजा हो जाए तो रोजा रोजे हकीकी की शक्ल इख्तियार करता, रोजा रोजे हकीकी की शक्ल इख्तियार करता। और आप खुम में ईरान में आप देखेंगे एक निजाम विलायत पाबरजा है, कायम है, उसकी वजह से एक इदारा है वहां पे सितादे इकामाए नमाज, उस इदारे का काम यह है कि पूरे ईरान में इकामाए नमाज, नमाज को कायम करने के लिए लोगों को, लोग अगर सफर कर रहे हैं बिलफर्ज, आप कुम से मशहद जा रहे हैं बस में बैठकर, तो आपको जहां पे भी बस वाला रोकेगा वहां पे आपको नमाज की सहूलत रहेगी। पूरे ईरान में आप कहीं भी सफर कर लीजिए, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नमाज खाना नहीं मिला या मस्जिद नहीं मिली, सितादे इकामाए नमाज का ये कारनामा है। यहाँ पे हम अगर किसी एक गैर मारूफ जगह पर चले जाए तो वहां पे मस्जिद ही नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, वजू करने के लिए एहतमाम ही नहीं है, ना तहारत के लिए सही एहतमाम, लेकिन ईरान में ये चीज है, विलायत चूंकि पाबरजा है, विलायत चूंकि कायम है तो नमाज भी कायम है। जकात का निजाम, जकात का निजाम जब भी फसल कटती ईरान में, जो उसका नाम है सितादे जकात, अहियाए जकात, सितादे अहियाए जकात, जकात को जिंदा करने वाला इदारा, वो इदारे के लोग फहाल हो जाते, एक्टिव होके किसानों से जाके मिलते, जकात की अहमियत को समझाते। और कई लोगों, कई किसानों के, खुद मैं इंटरव्यू देखा टीवी पे, जो आके ये बोले कि जकात देने के बाद हमारी फसल में दुगना और तिगना या चौगना इजाफा हुआ जकात अदा करने के बाद। तो यानी निजाम विलायत अगर कायम हो गया तो नमाज भी कायम हो गई, जकात भी कायम हो गई। हज ऐसा, हज के मौके पे देखेंगे पूरी दुनिया के हाजियों की नजरें या तो ईरानी हुज्जाज पे रहती या लुबनानी हुज्जाज पे रहती, हज को सही माना में अदा करते ईरानी। और उसकी एक दलील 1987 में 400 के करीब हुज्जाज को मार दिए ना, बोलो कत्ल कर दिए, शहीद कर दिए। क्यों कत्ल करे? जब उनको खतरा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वो देख रहे थे कि एक मरतबा हुजूम करके इनके ऊपर ऐसा कुछ कर दिया जाए कि मर्ग पर अमेरिका का नारा हजमे ना लगे, अमेरिका मुर्दाबाद का नारा हजमे ना लगे। एक वाक़या सुनाओ आपको, हम जो रमीय जमानत करते थे, रमीय शैतान कंकरी जो मारते, यूं मारना है कंकरी, यूं नहीं मार सकते, यूं मारना है। तो रमीय जमानत जो करते, शहीद मोहम्मद अली नकवी, पाकिस्तान में इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की इदारा है, उसके बानियों में से बानी है बल्कि खुद शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी, 40 साल के हो गए, 40 साल की उम्र गुजरने के बाद ये कहते हुए लोगों ने, यानी लोग सुने उनसे कि 40 साल का हो गया अब तक शहादत नहीं मिली, इसका मतलब अल्लाह को अब तक मेरा कोई अमल कबूल नहीं हुआ, 40 साल की उम्र होगी। तो वो ये किए, जिस साल ये ईरानियों के साथ हादसा पेश आया उस साल रमीय जमानत कर रही थी पूरी उम्मत मुस्लिमा, तो वो क्या करे, अंदर कूद गया उसके, पहले अब तो बिल्डिंग बना दी, पहले बिल्डिंग नहीं थी, वो ऐसा गोल था, बीच में दो जो है वो सुदून लगे हुए थे, तो वो अंदर कूद गए उसके और जाके अमेरिका का परचम बांध दिए वो दोनों सुदूनों के, आज का शैतान ये है, इस पे रमी करो। फिर मुंतजिर जैदी जब एक बार जूता फेंक के बुश को मारे थे वो सहाफी, तो ईरान में जगह जगह लिखा हुआ था कि रमी शैतान, शैतान को रमी होगी, यानी कंकर दो, ऐसा रमी शैतान। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि अगर विलायत कायम हो गई तो हज भी माना है हज, यानी हज हकीकी मानों में हज अदा होता। आप देखिए माह रमजान में रोजा रखते ना हम लोग, तो इस साल हमारे जो दोस्त हैं आला मुर्तजा, उनके वालिद हैं खास तौर पे ईरान आए के, ईरान में हम लोग आके जो है माह रमजान गुजारे यहाँ के, हालांकि सख्त थे रोजे, यहाँ पे आसान थे, यानी यहाँ पे रोजा रखना आसान था, यहाँ पे गर्मी नहीं थी, ईरान में शदीद गर्मी थी, उसके बावजूद भी हालांकि वो लोग सिंगल सीधा है, उनकी वालिदा भी रिटायर्ड है, तो यकीनन वालिद भी जो है वही उम्र के होंगे, तो वो लोग ईरान में आके रोजे रख रहे हैं। क्यों रोजे रख रहे हैं, क्योंकि शबे कदर का लुत्फ उठाना चाह रहे हैं, शबे कदर की लज्जत हासिल करना चाह रहे हैं। क्यों रोजे में माना है हकीकी, पहले दिन की दुआ में है ना, ऐ अल्लाह तू मेरी नमाजों को हकीकी नमाज बना दे, माह रमजान के पहले दिन की दुआ, और हमारे रोजों को हकीकी रोजे बना, हम लोग रस्म अदा कर रहे हैं, हकीकी रोजे कहा है हमारे। तो विलायत अगर पाबरजा हो जाए, विलायत अगर कायम हो जाए, तो नमाज हकीकी नमाज, रोजा हकीकी रोजा, हज हकीकी हज, ज़कात हकीकी हज, और हकीकी मानों में अदा होती है। गदीर को समझने का नतीजा, आज आप देखिए खुद गदीर हमको समझ में ना आती अगर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैहि मतलब न लाते। मैं कई बार कर चुका हूं, मैं करबला को नहीं समझ सकता था अगर इमाम खुमैनी का इंकलाब नहीं देखता, मैं करबला मुबहम हो जाती मेरे सामने। ये इतना बड़ा करम है कि बहुत सी बातें हमको अपनी जिंदगी में समझ में आ गई, और बहुत से लोग उसको समझने से खासिर है। कितनी बड़ी बात है, आज ही मेरे जहन में ये बात आई कि अगर अगर मसलन ये रास्ता इख्तियार न करते और गदीर को नजदीक से समझने का मौका नहीं मिलता, तो यकीनन हम भी गाड़ियां उछालने वालों में से होते, यकीनन हम भी पटाखे छोड़ने वालों में से होते। कल या परसों की बात है, बाबा रामदेव जो टीवी पे आते वो ये बोल रहे थे, यानी मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि वो कौमें जो शब्दो मत के साथ रसूम की पाबंद है वो किस हद तक बात कर रहे हैं, देखिए ये बताना चाह रहा हूं। रामदेव ये कह रहे थे दिवाली के मौके पर मेरी तुम सब लोगों से ये गुजारिश है कि तुम लोग पटाखे नहीं छोड़ना, मैं कभी पटाखा नहीं छोड़ा, पटाखे से बखौल उसके प्रदूषण फैलता, पोल्यूशन, पटाखे मत छोड़ो, पटाखे मत छोड़ो, मैं कभी पटाखे नहीं छोड़ा, दिया जलाओ बहुत, अगर तुमको अगर ईद दिवाली मनाने हैं दिया जलाओ या पूजा करो या मसलन जो भी उनके पास रसूम है एक दूसरे को तोहफे दो। अच्छा तोहफों में भी ये कह रहा था कि कोई और चीज मत दो, हमारे पतंजलि प्रोडक्ट्स दो बोला यानी इससे लोग खा के सेहतमंद रहेंगे, मिठाई खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, पूरी मिलावट है उसमें। तो अल मुख्तसर ये कि बाबा रामदेव ये कह रहा था कि यानी दिवाली में पटाखे मत छोड़ो और होली को तुम लोग क्या बनाए हुए नशे का वो, यानी जब नशा करना है तो तुम लोग होली खेलते, यानी होली के दिन खाली नशा करते रहते, भंग पीते रहते, शराब पीते रहते। तो उन्हें ये बोल रहा था कि ना होली इस तरह मनाओ ना दिवाली इस तरह मनाओ। बाबा रामदेव और कितना उसका
कह रहा था कि 700 करोड़ लोग 700 करोड़ लोग 200 मुल्क में रोज मुझे देखते हैं। अगर मुबालिगा कर रहा होगा, खैर उसकी उस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप ये बतलाइए कि उसको डर नहीं है उसकी यानी मकबूलियत में कमी आ जाने का। हमारे लोगों से जब बोलते भाई जरा बोलो भाई पटाखों के खिलाफ, अरे कौम दाढ़ी नोच लेती बोलती, अरे जरा बोलो फला काम हो रहा शराब पी के नाच रहे, अरे नहीं नहीं लोग नहीं बोल सकते हालात खराब है, इस किस्म की बातें करते। बाबा रामदेव से तू भी सबक हासिल करना चाहिए। अरे कितने हिंदू नहीं होंगे भाई मुल्क में, अरे कितने हिंदुओं की दुश्मनी बोल लेने की बात है, पटाखे मत छोड़ो। लेकिन मालूम हो गया कि बात गलत है और हम अपनी ईदों में और हम अपने त्योहारों में जो है इसलाह करने के लिए तैयार ही नहीं है, तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है। कल की बात अर्ज कर रहा हूं, इबादत खाने हुसैनी में जो जश्न हो रहा था अखबारी हजरात की जानिब से एक किताबचा बट रहा था वहां, मैं खुद भी गया था कि आकर सुनू क्या कहते हैं ये लोग, तो किताबचा बट रहा था, तो किताबचा खोलेंगे। अच्छा किताबचे के पहले सफे पे सरेवर्क पे क्या लिखा हुआ है मालूम है आपको? ये किताबचा फकत शिया इस्ना शरी अखबारी मुकल्लिदीन इमाम जमाना के लिए शाये किया गया है, इसको ना गैर हजरात पढ़े ना एतराज करें, ना पढ़ने की जहमत करें ना एतराज करें। अच्छा आप किताबचा खोलिए, किताबचा खोलते ही हजरत आयतुल्लाह उज़्मा रहबर मुअज़्ज़म इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस तरह लिखा हुआ है, और एक जगह ये लिखा हुआ था उस पे के खालिक़े हकीकी रब्बुल आलमीन मौला अली जल्ला जलालहू। ये किताब अब वो किताबचा होना चाहिए, हमारे एक दोस्त चार किताबचे लिए थे ताकि सनद रहे, चार किताबचे लिए थे हम लोग, जाते वक्त दो लिए आते वक्त दो लिए। तो ये क्या बात है, ये गदीर की महफिल में ये बात है। अगर गैर कौम के हाथ में लग जाए और वो काफिर बोल दे तो फिर हमारे पर हम एतराज करने का हक रखते नहीं रखते, फिर क्यों भाई? अच्छा उसमें लिखा हुआ एतराज भी नहीं करना ना गैर पढ़ना, उमूमी तौर पे आप तकसीम कर रहे, यानी इसका मतलब यह है कि फिर वहां बोर्ड लिख के लगाओ कि अखबारी के अलावा जो हमारे अखबारियां उनके अलावा कोई नहीं आना, आने के लिए तो सबके लिए दरवाजे खुले हुए, और फिर ये लिख रहे हैं आप उसमें कि जो है ये गैर अखबारी हजरात गैर मुकल्लिदीन इमाम जमाना नहीं पढ़ना और ना एतराज करना, और बातें उसमें ये लिखी हुई और अनाप शनाप बातें लिखी हुई यकीनन किसी, यानी अगर हम यानी अगर हमारे उलमा को मिल गया तो अजब नहीं कुफर का फतवा दे, अजब नहीं चेबसाइन के दूसरे। तो अजीजा ने मोहतरम कदीर को जो है आप ये क्या है एक फासिद आदमी को अपना लीडर बनाए हुए, मालूम है उसके ताल्लुक से उन लोग वो खुद गवाही देते के उसके फसाद की, लेकिन फासिद को लीडर बनाए हुए। हत्ता मैं सुना एक बार देखा भी बल्कि के बाजाबता पैर पड़े जाते, बाजाबता सीन रसीदा अपना 70-70 साल के लोग पैरों पे सर रख देते, ये क्या चीज है, कौन सी गदीर की तालीमात है ये पैरों पे सिर रख देना। तो हवाई बातें तो बहुत होते रहती, इला माशाल्लाह उसकी कमी नहीं है, जमीनी हमको जमीन पर आने की जरूरत है, जमीनी हकाय ग्राउंड रियलिटीज को समझने और उसको हल करने की जरूरत है। गदीर का एक जुमले में अगर फलसफा आए तो वो ये है कि नेक लोगों को क़यादत से पुर्द करो, और नेकी का मिलाद इल्म और तक़वा है। रसूल खुदा हजरत अली अलैहिस्सलाम को दामाद होने की वजह से या भाई होने की वजह से अपना खलीफा या जानशीन या वसी नहीं बनाए, बल्कि अल्लाह के हुक्म से बनाए, और अल्लाह के नजदीक मिला इल्म और तक्वा है, इल्म और तक्वे से हटकर अल्लाह के नजदीक इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, तुम्हारे नजदीक साहिब इज्जत सबसे ज्यादा साहिब इज्जत वही है जो सबसे ज्यादा बातकवा है, अल्लाह का मिला किए। और उदुल इल्मा दराजात बोल के जो कुरान मजीद की एक आयत है कि हमारा ये इरादा है कि अहले इल्म के दराजात को हम बुलंद करें, इल्म और तक्वा ये मियार रसूल खुदा का है और यही मियार हमारा भी होना चाहिए, हमारी सालिह क़यादत को प्रमोट यानी उसको कबूल करने और उसको प्रमोट। और सबसे अहम चीज ये है कि सालिह क़यादत को पहले शिनाख्त हो, हमको सालिह क़यादत की शिनाख्त हो, शिनाख्त के बाद इत्तेबा हो, सिर्फ ये कह के जबानी दावे बहुत से लोग हुए ऐसे, तो हजरत अली अलैहिस्सलाम का तो बड़ा गिला है इस पे शिकवा है, जो लोग खुद गदीर कौम में मौजूद थे हजरत अली अलैहिस्सलाम उनको बाज़ाब्ता कसमें दे के पूछे तुम तो गदीर कौम में मौजूद थे ना तुमको क्या हुआ तुम गवाही दो, डर गए, पीछे हट गए। तो पहले तो साले खियादत की शिनाख्त हो, साले खियादत की शिनाख्त के साथ इत्तेबा हो, यानी साले खियादत जो बोले वो हमारे लिए हर्फ आखिर हो, हर्फ आखिर हो, क्योंकि वो जिस शख्स को हम आगे बढ़ाए उसको इल्म और तकवे की बुनियाद पे आगे बढ़ाए। जब इल्म और तकवे की बुनियाद पे आगे बढ़ाए तो फिर चूनो चला नहीं, जो बोल दिए आमन्ना। गदीर का मुख्तसर फलसफा यही है कि नेक लोगों की, साले लोगों की क़ियादत। सलावत पढ़ लीजिए।
सलाम का जो बीमार है उनको शिफाए का मिला फरमा, जो बेरोजगार है उनको रोजगार का फरमा, जहाँ जहाँ मोमिन मोमिना मुस्लिम मुसलमान रहते हैं उनकी जान मात्र इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हमारा खातिमा ईमान पर रखते। परवरदिगार हमारे गुनाहों ने कबीरा व सगीरा को माफ फरमा। परवरदिगार कदीर के पैगाम को समझने की हमको तौफीक अता फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कुरान पढ़ने पढ़कर समझने समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा मोहब्बत अहले बैत की शमा जो हमारे सीनों में रोशन है हर आन, उसकी हिद्दत तदबीर में इजाफा फरमा। परवरदिगारा हमारे मराजे मुज्तहिदीन उलमा अकबर मुअज्जम इंकलाब सैयद मुकाबलत सैयद हसन नसरुल्लाह को अपनी हिफ्ज़ो अमान में फरमा। परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हमारी कौम को साले क़ियादत अता फरमा। परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दुनिया में सितमदीदा मुसलमानों की मदद फरमा। परवरदिगारा इराक अफगानिस्तान पाकिस्तान बहरीन बर्मा के मुसलमानों की मदद फरमा। परवरदिगारा हमारे मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, ताजीर फरमा, हजरत हुज्जत के ज़हूर में हमें हजरत के नासिरों में शुमार फरमा। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलावत अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।